वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवतम स्कंद दसवां अध्याय 27। इस अध्याय का शीर्षक है इंद्र एवं सुरभि द्वारा प्रार्थना, श्लोक क्रमांक 8। सत्वं मम ऐश्वर्यमदप्लुतस्य कृतागसस्ते विदुषः प्रभावम् क्षन्तुं प्रभोऽथार्हसि मूढचेतसो मैवं पुनर्भुन्मतिरीश मे सति। सत्वं ममैश्वर्यमदप्लुतस्य कृतागसस्ते विदुषः प्रभावम् क्षन्तुं प्रभोऽथार्हसि मूढचेतसो मैवं पुनर्भुन्मतिरीश मे सति। सत्वं ममैश्वर्यमदप्लुतस्य कृतागसस्ते विदुषः प्रभावम् क्षन्तुं प्रभोऽथार्हसि मूढचेतसो मैवं पुनर्भुन्मतिरीश मे सति। सः, वह, त्वं, आप, मम, मेरे, ऐश्वर्य, शासन के, मद, नशे में, प्लुतस्य, निमग्न रहने वाले, कृत, किया हुआ, आगसह, अपराध, ते, आपका, अविदुषः, न जानने के कारण, प्रभावम्, दिव्य प्रभाव को, क्षन्तुम्, क्षमा करने के लिए, प्रभो, हे प्रभो, अथ, अतएव, अरहसी, आपको चाहिए, मूढ़, मूर्ख, चेतसह, जिसकी बुद्धि, माँ, कभी नहीं, एवं, इस प्रकार, पुनः, फिर, भूत, होए, मति ही, चेतना, ईश, हे प्रभु, मैं, मेरी, असति, अशुद्ध। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा। अपनी शासन शक्ति के मद में चूर एवं आपके दिव्य प्रभाव से अनजान मैंने आपका अपमान किया है। हे प्रभु, आप मुझे क्षमा करें। मेरी बुद्धि मोहग्रस्त हो चुकी थी, किंतु अब मेरी चेतना को कभी इतनी अशुद्ध न होने दे। तात्पर्य, यद्यपि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा कर दी थी, किंतु इंद्र को अभी तक दंडित नहीं किया था। अतएव इंद्र भयभीत थे कि श्री कृष्ण किसी भी समय विवस्वान पुत्र यमराज को बुला सकते हैं, जो ईश्वर के नियमों का उल्लंघन करने वाले उद्धत व्यक्तियों को दंड देते हैं। इंद्र अत्यधिक भयभीत थे, इसलिए उन्होंने यह दलील देते हुए क्षमा याचना की कि एकमात्र कृष्ण कृपा से ही वह शुद्ध हो सकते हैं, क्योंकि वह इतने जिद्दी हैं कि केवल दंड से ही वह नहीं सुधर सकते। वस्तुतः इंद्र द्वारा दीनता के प्रदर्शन के बावजूद उनका हृदय पूरी तरह शुद्ध नहीं हुआ था। आगे चलकर इसी स्कंद में हम देखेंगे कि जब एक बार भगवान कृष्ण ने इंद्र के राज्य से एक पारिजात पुष्प लिया तो बेचारे इंद्र ने भगवान के विरुद्ध उग्र प्रतिक्रिया दिखलाई। अतएव हमें कृष्ण के राज्य में अपने शाश्वत धाम वापस जाने की आकांक्षा करनी चाहिए। हमें भौतिक देवताओं के अपूर्ण जीवन में उलझना कभी नहीं चाहिए। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाखया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के रविवार के श्रीमद् भागवतम क्लास में। गोवर्धन लीला से श्लोक हम चर्चा कर रहे हैं हमारे पिछले कुछ सिटिंग से, जहां देवराज इंद्र प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि मुझे क्षमा कीजिए और मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए कि मैं जो गलती किया हूं फिर वो गलती न दोहराऊं। और तात्पर्य में ये बताया गया है कि देवराज इंद्र बहुत जिद्दी थे और जिद उनकी ऐसी कि जो क्षमा याचना इस श्लोक में वो कर रहे हैं भगवान के समक्ष। सबक सीखने के पश्चात इसी स्कंद में आगे चलकर उन्होंने ऐसी ही गलती की। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे परिवर्तन के ऊपर कि परिवर्तन केवल बोलने से नहीं होता। यहां पर देवराज इंद्र केवल कहे कि मैंने अपनी गलती का एहसास कर लिया है और अब मुझे आप क्षमा कीजिए और मुझे ऐसी बुद्धि न दीजिए कि मैं फिर से ये गलती करूं। तो भगवान तो बुद्धि देते हैं। गीता के 10वें अध्याय में भगवान ने कह दिया ददामि बुद्धि योगम, मैं वो दिव्य बुद्धि प्रदान करता हूं। परंतु ये जो लाइन है इस श्लोक की दूसरी लाइन है। पहली लाइन क्या है? तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्। तीसरी लाइन, ये तीसरी लाइन है, ददामि बुद्धि योगम। तो भगवान सबसे पहले ये अपेक्षा कर रहे हैं कि हम हमारी तरफ से प्रयास करें और हमारा प्रयास देखने के पश्चात फिर भगवान उस प्रकार की बुद्धि हमें देते हैं जो हमारे अंदर वो ठोस परिवर्तन ला सके। इसलिए हम ये शब्द कह रहे हैं ठोस, परिवर्तन के पहले सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन। चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षाओं में जो प्रसिद्ध श्लोक कहा, तृणादपि सुनी चेन तरोर इव सहिष्णुना, इसमें उन्होंने कहा कि तृण से भी अधिक नम्र। अब तृण और घास में अंतर क्या है? इस पर गौर करने लायक बात है ये कि तृण कहते हैं घास जब सूख जाता है, जैसे चटाई में से जो निकलते हैं सूखी हुई घास की जो चटाई बनती है और उसमें से जो निकलते हैं उसको कहते हैं तृण। कई बार आपने देखा होगा कि चटाई में से ऐसे तृण नीचे गिरे हुए, और एक है हमारे बाहर लॉन पर घास। तो जब चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं तृण से भी अधिक नम्र, तो उन्होंने घास क्यों नहीं कहा, तृण का उदाहरण क्यों दिया? क्योंकि घास पर आप चलकर देखिए, जितने समय आपका पैर घास के ऊपर रहेगा उतने समय घास नम्र बना रहेगा। जैसे ही आपने आपका पैर उठाया घास भी उठा। परंतु तृण, चाहे आप पैर रखो न रखो, फ्लैट लेटा रहता है। तो कई बार हमारे अंदर देवराज इंद्र जैसी मेंटालिटी आ जाती है, तो हां नम्रता घास की तरह कुछ समय के लिए दिखती है। जब भगवान के पैर ऊपर रहते हैं अलग अलग तरीके से दबाए हुए, परंतु जैसे ही अवसर मिलता है भगवान के कदम हमारे ऊपर से उठे, तुरंत फिर हम फिर से चले जाते हैं हमारे पिछले रूटीन फॉल्स प्राइड एक्टिविटीज में। इस श्लोक में जैसे इंद्र के विषय में कहा गया। तो हमने पिछले बार परिवर्तन के विषय में कुछ मुद्दे डिस्कस किए थे। टाइम विल सिंपली चेंज द टेक्सचर ऑफ आवर स्किन। समय के प्रभाव से यदि हम प्रतीक्षा करें कि परिवर्तन मेरे अंदर अपने आप आ जाएगा, तो अपने आप होगा क्या? ज्यादा से ज्यादा टाइट स्किन विल टर्न इनटू फ्लैट टायर। प्रभुपाद ने एक बार कहा, प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ बैठे थे और श्रुत कीर्ति प्रभु प्रभुपाद की मालिश कर रहे थे, तो प्रभुपाद ने अपना हाथ ऐसे किया और यहां पर जो मांस था उसको ऐसे हिलाते हुए प्रभुपाद कहे, फ्लैट टायर, दिस इज ओल्ड एज। और प्रभुपाद ने कहा, इट विल हैपन टू एवरीवन, सबका टायर पंचर होने वाला है। समय सबका टायर पंचर करता है। और कई बार दिखाई नहीं देता है पंचर, कहां हुआ है। बचपन में हम साइकिल का पंचर ठीक कराने जाते थे, तो वो जब पानी के अंदर हवा भरकर, उसमें पहले हवा भरनी पड़ती है पंचर देखने के लिए। इसलिए भगवान भी हमारा पंचर दिखाने के लिए पहले हवा भरते हैं। तो अंधकार केवल प्रतीक्षा करने से दूर नहीं होने वाला। जैसे अभी लाइट गई थी तो हम बैठे रहते, लाइट आएगी, मैं प्रतीक्षा करूंगा तो मुझ पर तरस खाकर लाइट आएगी। नहीं, उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। जब तक कि हम रोशनी को अपने प्रयासों से नहीं लाते उस कमरे में जहां पर अंधकार है, अंधकार अपने आप केवल समय के प्रभाव से नहीं जाने वाला। मेहनत करनी होगी। तो हमने ये कहानी ली थी, घबराइए मत, फिर से नहीं लेंगे इसे भी, केवल एक रिकैप के लिए, काफी गैप हो गया दो संडे का। 3 लंच बॉक्सेस, जिसका तात्पर्य ये था, कुकिंग अवर ओन लंच। कि हम स्वयं ही अपने जिंदगी का भोजन पकाते हैं, स्वयं ही अपनी जिंदगी का टिफिन भरते हैं उस भोजन से, और फिर शिकायत करते हैं कि मेरे साथ भगवान इतना बुरा क्यों कर रहे हैं, मेरे टिफिन में ये सब्जी क्यों भगवान ने भरी, सब्जी खरीदी किसने, काटी किसने, बनाई किसने, भरी किसने, और शिकायत किसके ऊपर। तो अनविलिंगनेस और विलिंगनेस, अनविलिंगनेस साइन है अहंकार अभिमान का, विलिंगनेस ये साइन है ह्यूमिलिटी। और जब अहंकार के वशीभूत होकर जीव अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाता है अपने अलग अलग योनियों में कर्मों के द्वारा, ये अलग अलग व्यंजन क्या है, अलग अलग कर्म है विभिन्न योनियों में जीव के, और उन कर्मों के वजह से जब वो उन परिणामों को भुगतने लगता है तब फिर जाकर खड़े होता है शिकायत के काउंटर पर, कंप्लेंट काउंटर, व्हाई दिस थिंग, व्हाई डू बैड थिंग्स हैपन टू सच अ गुड पर्सन लाइक मी, एंड व्हाई गुड थिंग्स आर हैपनिंग टू सच बैड पीपल लाइक द अदर वन। तो इसलिए शुरुआत हमारे परिवर्तन की विलिंगनेस नम्रता से, जहां परिवर्तन चेंजिंग ये जो हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू, अन्यथा शारीरिक परिवर्तन और हमारे अंदर का मानसिक ये सारे परिवर्तन तो काल के प्रभाव से ये धीरे 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 हम महसूस करते रहते हैं, परंतु हमारे जीवन के कई ऐसे परिवर्तन हैं जिनको हम प्रयास कर लाए हैं, जैसे मृगारी, जय श्री राधा मदन गोपाल ललिता विशाखा देवी की, मृगारी उसने अपने जीवन में मेहनत कर परिवर्तन लाया। हाँ, आध्यात्मिक पथ से नीचे गिरने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, जैसे अजामिल ने मेहनत की, उस वैश्या का भरण पोषण करने के लिए अजामिल ने बहुत मेहनत की, निकल जाता था अपने डकैती के लिए सुबह सुबह, और मगारी जो कि ऐसा नृशंस शिकारी था, अधमरा कर छोड़ दिया करता था प्राणियों को, उसने भी मेहनत की, और उसके लिए अपने धनुष बाण को तोड़कर, कल ही हम हमारे IYCF में चर्चा कर रहे थे कि रिस्क, हम जीवन में कितना खतरा मोल लेते हैं, रिस्क लेते हैं, और शुद्ध भक्त भगवान के लिए जो खतरा मोल लेते हैं। अब देखिए, अर्जुन 64 करोड़ योद्धाओं के बीच में अपना गांडीव छोड़कर बैठ गए, लेक्चर सुनाओ, गीता सुनाओ, हिम्मत चाहिए, इतने बड़े योद्धा 64 करोड़ योद्धाओं के सामने इस प्रकार से हताश अपने आप को प्रस्तुत कर सबसे बड़े धनुर्धर अर्जुन और दोनों सेनाओं के मध्य में कि मुझे अब इस संसार से लेना देना नहीं है, फिलहाल मुझे बताइए कि मुझे करना क्या है, मेरा ये विलाप ये दूर कीजिए, ये विषाद दूर कीजिए। तो मृगारी, मृगारी के अंदर जो परिवर्तन, नारद मुनि ने मृगारी को ये नहीं कहा कि पहले मैं तुम्हारे सारे अरेंजमेंट्स करूंगा फिर तुमसे कहूंगा कि धनुष तोड़ो, और नारद मुनि ऐसा, नारद मुनि कोई बहुत बड़े उद्योगपति या डोनर नहीं थे पैसों के अरेंजमेंट्स करने वाले, वो खुद सन्यासी। तो सबसे पहला डाउट मृगारी को नारद मुनि के ऊपर होता है कि आपका तो ठिकाना ही नहीं है, आप मेरा क्या ठिकाना लगाओगे। तो मृगारी ने जो रिस्क लिया उसे कहते हैं दृढ़ विश्वास। एक शुद्ध भक्त के वचनों के ऊपर दृढ़ विश्वास। तो हमने, मेरे ख्याल से हमारी अंतिम स्लाइड में ये एक कहावत ली थी, शरीर में नरमाई या जीवित रहने का लक्षण है, वरना अकड़ तो केवल मुर्दों में पाई जाती है। जब हमारी एयरफोर्स की ट्रेनिंग चल रही थी तो हमको एक शोल्डर्स को कैसे स्ट्रांग करना है उसकी एक एक्सरसाइज थी। बहुत बड़े बड़े वेट्स को शोल्डर पर बांध कर आपको क्रॉलिंग, फ्रॉग जंप, क्लाइंबिंग, ये सब, ताकि कंधे मजबूत हों। और जब फायरिंग, राइफल शूटिंग होती थी उसमें, यहाँ पर ये जो कॉलर बोन, तो हमारे फायरिंग ऑफिसर कहते थे कि आपके कंधे और ये कॉलर बोन इतनी सख्त हो जानी चाहिए कि यदि वो राइफल का बैक फायर हो तो राइफल का बट टूट जाए, इतना सख्त ये कॉलर बोन होना चाहिए। तो वह हमारे एक फायरिंग ऑफिसर ने, ये केवल फोकस उनका एक महीने के लिए शोल्डर्स के ऊपर था, शोल्डर्स को कैसे स्ट्रांग करना। तो मुझे याद आ रहा है उसने अपने मोटिवेटिंग स्पीच में, उनके काफी उनको सिखाया जाता है कि कैसे जो सैनिक हैं उनको मोटिवेट करें स्पीच से, ट्रेनिंग तो खैर है ही स्पीच से भी। तो उसने पूरा जो हमारा वो फ्लाइट था, बटालियन था, उसके सामने चिल्लाते हुए कहा, सैनिकों, जिंदगी जी जाती है स्वयं के कंधों पर, जिंदगी जी जाती है स्वयं के कंधों पर, दूसरों के कंधों पर तो मुर्दों के जनाजे निकलते। मुर्दे से याद आया मुझे। तो यदि हमें आध्यात्मिक जीवन में जीवित रहना है, यदि आध्यात्मिक जीवन में जीवित रहना है तो शुरुआत है उस नरमाई से, जिसे कहते हैं विलिंगनेस टू सरेंडर, विलिंगनेस टू चेंज फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा। हमारा सरोकार किससे है? भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता से। इसलिए शुद्ध भक्त वो अपने अंदर परिवर्तन लाना चाहते हैं, उनका एकमेव उद्देश्य केवल भगवान को प्रसन्न करना, यही है और कुछ नहीं। तो अब इस परिवर्तन को हम अपने जीवन में व्यावहारिक तरीके से, प्रैक्टिकली कैसे ला सकें? सम स्टेप्स टू बी टेकन। फर्स्ट, बिगिन विथ स्मॉल चेंजेस. परिवर्तन हां बद्ध जीवात्मा से शुद्ध जीवात्मा या मुक्त जीवात्मा बनना है. इस भौतिक संसार से गोलोक वृंदावन हमारा निवास स्थान बनाना है. बहुत बड़ा चेंज है ये सब. तो कृष्ण प्रेम हासिल करना, ये सारे बड़े बड़े बदलाव कई बार लगता है कि टू फार फेच्ड, बहुत दूर है दिल्ली, मंजिल दिखाई नहीं दे रही, गंतव्य स्थान न तो मेरे जीवन में दिखाई दे रहा है न मेरे गुरु बंधुओं के जीवन में दिखाई दे रहा है. कई बार उल्टा होता है, मेरे जीवन में तो दिखाई दे रहा है, उनके जीवन में नहीं दिखाई दे रहा. तो जब हम देखते हैं कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, बाकी हमारे सारे गुरु बंधु वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, अब यहां पर देवराज इंद्र ये स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर हम कौन है? तो कैसे जो प्रभुपाद ने हमारे सामने ये प्रस्ताव रखा है और प्रोजेक्ट रखा है, गोइंग बैक होम बैक टू गॉड हेड, और प्रभुपाद ने तो यहां तक कह दिया गोइंग बैक होम बैक टू गॉड हेड मीन्स कंप्लीट प्यूरिफिकेशन. इफ इट इज नॉट कंप्लीट सरेंडर एंड कंप्लीट प्यूरिफिकेशन, इट विल बी सिंपली गोइंग बैक होम, नॉट गॉड हेड. टू बिगिन विथ स्मॉल चेंजेस. इसलिए जो एक मैच्योर्ड प्रीचर होते हैं वो किसी व्यक्ति के अंदर बदलाव लाने के लिए कहते हैं, हाँ आप छोटे छोटे जो बेबी स्टेप्स हैं वो लेना शुरू कीजिए. जो इमैच्योर होते हैं, 16 माला जब तक नहीं करोगे तब तक आना नहीं, खाना नहीं, सोना नहीं, तो उनको खाली नहीं याद रहता है, फिर तो वो भी बोल देते हैं नहीं, फिर वो परमानेंटली नहीं हो जाता. इसलिए हमें जो हमारी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से यदि थोड़ा सा ज्यादा हम करें, क्योंकि हर समय कुछ समय बाद कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि कम ही होने वाला है. जैसे फीस्ट बना हुआ है और आपको मालूम है कुछ एग्जॉटिक आइटम है, हलवा, बटर हलवा, तो पहले से कुछ लोग बोलते थोड़ा ज्यादा ही डाल दो भाई, दूसरी बार लेने आऊंगा पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पहले से डाल दो. तो क्या है, मेकिंग श्योर. तो इसलिए स्मॉल स्टेप्स का अर्थ है कि हमारी जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से थोड़ा ज्यादा अगर हम प्रयास करेंगे तो वहां से शुरुआत करते हुए हम उस शॉर्ट टर्म गोल पर फोकस करते हुए हमारे लॉन्ग टर्म गोल जो है उसको हमारे सामने रखना है. एक्शन किसके ऊपर है? शॉर्ट टर्म गोल के ऊपर. विजन किसके ऊपर है? लॉन्ग टर्म गोल के ऊपर. तब जाकर वो परिवर्तन की शुरुआत सही बैलेंस्ड तरीके से होगी. मैं उदाहरण देता हूं फुटबॉल गेम का, कि एक फुटबॉल प्लेयर उसका विजन रहता है गोल पोस्ट, परंतु एक्शन कहां चलता है? फिलहाल बॉल कहां है? वहां पर, जहां बॉल है वहां ड्रिबलिंग कर रहा है, लेकिन उसको पता है ले जाना कहां है इसे. यदि वहां पर ही व्यस्त वो ले ही नहीं जा रहा है, वहां पर छोड़ूंगा नहीं बॉल को, मैं ले किसी को नहीं लेके जाने दूंगा, मैं भी नहीं लेके जाऊं किसी को नहीं, तो फायदा क्या? ठीक है तुम बहुत अच्छे ड्रिबलिंग कर रहे होंगे बॉल के साथ, लेकिन फाइनली उसको ले जाना है गोल पोस्ट, और दूसरा होगा उसको, वो सब टैलेंट्स नहीं आते होंगे लेकिन वो गोल पोस्ट में बराबर पहुंचा रहा है बॉल को। फाइनली क्या है, वहां पहुंचना है, लेकिन उसके पहले कितने सारे ऑब्स्टिकल्स ये प्लेयर्स के रूप में आएंगे, यहां वहां से, यहां वहां से, उनसे बचाते हुए बचाते हुए। विजन अपना गोल पोस्ट पर, एक्शन शॉर्ट टर्म गोल। सेकेंड स्टेप, सस्टेन एंड एब्सटेन मेथड, कि हम व्यक्तिगत रूप से पहचान लें कि कौन सी चीजें हैं जो अवरोध ला रही हैं मेरे आध्यात्मिक उन्नति में, उनसे दूर रहना, और कौन सी चीजें हैं जो मेरी काबिलियत है उनको बरकरार रखना, उनको बचाए रखना। दैट्स कॉल्ड सस्टेन। हर एक भक्त, उसके अंदर भगवान ने भक्ति करने की कोई तो कला दी है, कोई तो कला दी है, और उस कला को सस्टेन करते हुए उसके बलबूते पर एब्स्टिनेंस, ये दोनों का बैलेंस। थर्ड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। यदि हमारी प्रवृत्तियां बहुत ज्यादा तीव्र हैं इंद्रिय भोग के प्रति, तो भक्ति योग का मार्ग ये है कि उसके विकल्प हैं, उसके विकल्प हैं। कुछ चीजें हैं जिनके विकल्प नहीं है और उनको छोड़ना ही होगा, और भगवान ने भी बहुत ही मेच्योरली चीजें ऐसी दी हैं, जानते हैं कि जिसकी कंडीशनिंग्स बहुत स्ट्रांग होगी तो उसके लिए विकल्प ला कर दिए हैं। जैसे नारद मुनि ने शुरुआत ऐसे ही की मृगयारी के साथ, स्मॉल चेंजेस, पूरा मारो, पहले अधमरा कर कर तुम मारते थे, तड़पाते थे, पूरा मारो, स्मॉल चेंज था मृगयारी के लिए, लेकिन वहां से शुरुआत होके आगे चलकर इतना बड़ा वो भगवान का भक्त बना कि वो चींटियों तक को भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। फाइनली देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर डिटर्मिनेशन। व्हाट काइंड ऑफ डिटर्मिनेशन? रूथलेस। वी शुड बी रूथलेस फॉर आवरसेल्व्स, माइंड दैट। स्वयं के लिए हमें क्या होना है? निर्दयी। निर्दयी शब्द ध्यान में रखना, स्वयं के लिए उल्टा हो जाता है बहुत बार। स्वयं के लिए हम बहुत कृपालु हो जाते हैं और दूसरों के लिए निर्दयी हो जाते हैं, उल्टा, दूसरों के लिए कृपालु, स्वयं के लिए रुथलेस। प्रभुपाद को पूछा न्यू वृंदावन में, प्रभुपाद, व्हाट इफ यू डू नॉट हैव डिटर्मिनेशन? प्रभुपाद सेड, देन यू आर एन एनिमल। इफ यू वॉन्ट टू बी अ ह्यूमन बींग, बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ इज डिटर्मिनेशन, एंड वी हैव एडेड रूथलेस, मीन्स इन कलयुग वी हैव टू बी रूथलेस इफ यू वॉन्ट टू बी डिटरमाइंड। तो एक सुंदर उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे भक्ति वैभव स्वामी इनका, कि डिटर्मिनेशन और सरेंडर के ये एक उदाहरण। हमारे इस्कॉन के श्रील प्रभुपाद के बहुत वरिष्ठ सन्यासी शिष्य हैं ये भक्ति वैभव स्वामी। 2005 में जब मैं गीता नगरी में था, अमेरिका में, भक्ति तीर्थ स्वामी अपने अंतिम दिनों में थे, कैंसर उन्हें हुआ था, और बड़े बड़े सन्यासी जो अमेरिका में वहां पर उस समय थे, वो लोग आकर आए दिन मिला करते थे भक्ति तीर्थ स्वामी से। तो राधा दामोदर के बहुत सुंदर विग्रह गीता नगरी फार्म में, तो जो भी सन्यासी, विजिटिंग सन्यासी आते तो उनका प्रवचन होता, तो भक्ति वैभव स्वामी आए तो उनका लेक्चर रखा गया था, और जब भी ये कोई भी सन्यासी विजिटिंग सन्यासी आते तो भक्ति तीर्थ महाराज अपने व्हील चेयर पर उस कठिनाई में विकट परिस्थिति में वो उनका लेक्चर सुनने आते। इसे कहते हैं रूथलेस डिटर्मिनेशन। और उनकी हालत क्या थी, डॉक्टरों ने कहा था कि उनको जिस प्रकार का जो कैंसर हुआ था बोन के अंदर, उनके हरेक जॉइंट्स में क्रैक आ गया था, और छोटे मोटे क्रैक्स नहीं, एवरी सिंगल जॉइंट वॉज क्रैक्ड। तो वो अगर हिले भी ना तो भी कॉन्स्टेंट पेन रहता था, अगर वो एक मूर्ति के समान केवल बैठे रहें फिर भी कॉन्स्टेंट पेन। और जो राधा दामोदर का मंदिर था और जहां भक्ति तीर्थ महाराज के लिए नर्सिंग का अरेंजमेंट किया गया था, आधा किलोमीटर का डिस्टेंस था, और वो एक फार्म जहां पर पक्का रोड नहीं, तो व्हीलचेयर, चार लोग व्हीलचेयर को उठाकर, लेकिन वो खुद जो उस कच्चे रास्ते पर चलते तो उबड़ खाबड़ रास्ता, तो डॉक्टर तो बोला कि मैं तो ये देख ही नहीं सकता, तो वो डॉक्टर आना ही बंद कर दिया, क्योंकि डॉक्टर जानता था कि किस अवस्था में ये पेशेंट हैं, कितने पेन में, एक्सक्रूशिएटिंग पेन जिसको कहते हैं। वो आते थे सुनने के लिए। तो वहां पर सबने कहा कि हम अरेंजमेंट करते हैं, हम लोग सब जहां पर आप हैं। उन्होंने कहा नहीं, इट्स नॉट कंफर्टेबल फॉर अदर डिवोटीज, इट्स अ स्मॉल रूम, इट इज नॉट कंफर्टेबल फॉर अदर डिवोटीज, आई विल कम वेयर इट इज कंफर्टेबल फॉर एवरीवन एल्स। सो भक्ति तीर्थ महाराज वॉज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ रूथलेस डिटर्मिनेशन, दैट ही वॉज विलिंग टू अंडरगो दैट एक्सक्रूशिएटिंग पेन, डिस्कम्फर्ट, जस्ट टू मेक श्योर दैट अदर डिवोटीज हु आर हेल्दी, हेल एंड हार्टी, कंफर्टेबली लिसन टू द गेस्ट स्पीकर्स। और उनको देखकर आंखों में आंसू भी आना वो एक प्रकार का अपराध था, क्योंकि उनके अंदर जो लाइफ उस समय भी, उनके अंदर जो एनर्जी, श्रवण कीर्तन करने की जो एनर्जी उस अवस्था में उनके अंदर जो थी, उसको देखकर खुद के ऊपर तरस आता था हमें। वी वुड फील पिटी ऑन आवरसेल्व्स। भक्ति तीर्थ महाराज का एक उदाहरण है, हमारे इस्कॉन के एक और सन्यासी है भक्ति विश्रम्भ माधव महाराज। तो भक्ति विश्रम्भ माधव महाराज, ये इनका नियम है कि ये मंगलारती से पहले कुछ 16-20 राउंड्स कर लेते हैं, जहां पर भी ट्रेवल करते हैं मंगलारती से पहले, और बाद में भी करते हैं। तो भक्ति विश्रम्भ माधव महाराज एक मंदिर में पहुंचे और वहां पर सुबह 2:30 बजे उठकर वो अपना चैंटिंग शुरू किए। तो जैसे ही वो, अब बाकी भक्त मंदिर में सो रहे थे, तो वो थोड़ा एकांत स्थान ढूंढकर थोड़े दूर, ताकि जो सोए हुए भक्त उनको डिस्टर्ब ना हो, तो एकांत स्थान ढूंढे मंदिर का और वहां पर वो सॉफ्टली चैंटिंग शुरू किए अपना सुबह 2:30 बजे। और जैसे ही उन्होंने अपना चैंटिंग शुरू किया, उनको सुनाई देने लगा किसी और का जप। तो उनको आश्चर्यचकित वो हो गए कि इतने सुबह मुझसे पहले कौन उठकर जप कर रहा है। तो उन्होंने अपना जप रोका ढूंढने के लिए कि कौन है कि मुझे इनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए। तो वो ढूंढे तो एक कोने में बैठे हुए थे भक्ति तीर्थ स्वामी, उस समय उनका नाम था घनश्याम प्रभु ब्रह्मचारी। तो विश्रम माधव महाराज उनको जाकर उन्होंने दंडवत किया, पूछा कि आप रोज इतनी सुबह सुबह जप करते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ। और उसके पश्चात भी? हाँ उसके पश्चात भी। क्यों? तो भक्ति तीर्थ स्वामी कहते हैं, उनकी नम्रता है ये, क्योंकि उन्होंने कहा है, मैं एज इट इज रिपीट करना चाहूंगा। भक्ति तीर्थ स्वामी ने कहा विश्रम माधव महाराज से, आई एम बॉर्न इन दिस ब्लैक बॉडी विच इज वेरी फॉलन, मोर फॉलन देन एनी वन एल्सेस फिजिकल ह्यूमन बॉडी, सो आई नीड मोर एफर्ट, आई नीड मोर एंडेवर to go back home, back to Godhead than the regular ones. And therefore, if their morning program starts at 4:30, that's enough for them. But my morning program starts at 2:30 because it's needed for me. इसे कहते हैं ruthless determination. मुझे याद है जब पहली दफा वो राधा गोपीनाथ मंदिर में आए थे मंगल आरती, 5 बजे की मंगल आरती, संसार दावानल फर्स्ट लाइन से डांसिंग स्टार्ट। और जब तक यस्य प्रसादा तब तक तो उनका कुर्ता पूरा भीग गया था उनके पसीने से। मैंने आज दिन तक वैसे मंगल आरती अटेंड नहीं की। ही वॉज ऑन फायर, जो बोलते ना, ही वॉज ऑन फायर एंड ही लिट ऑल ऑफ अस ऑन फायर। एक भी शख्स नहीं था उस मंगल आरती में जिसके पैर 1 मिनट से ज्यादा टिके हुए थे ग्राउंड पर। सबको सो समवन हु इज हैविंग दैट रूथलेस डिटर्मिनेशन, इट इज कंटेजियस। वी वॉन्ट दिस काइंड ऑफ कंटेजियस डिजीज। अब उनके डिसाइपल्स हमारे श्रीवास प्रभु, एक नमूना आपने देखा होगा, जबकि 2 घंटे क्लास के बाद उन्होंने कहा कि आधे स्लाइड्स ही हुए हैं। और वो तो हम पर तरस खाकर फिर उन्होंने कह दिया ठीक है ठीक है। हमारे वासुदेव कृपा प्रभु, आप लोग वाकिफ होंगे, वरुण प्रभु, इनका नाम वासुदेव कृपा प्रभु, तो इन्होंने दीक्षा ली भक्ति धीर दामोदर महाराज, जो कि भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज के सन्यासी डिसाइपल, और वो अभी आने वाले हैं अगले महीने में। उनका स्ट्रिक्टनेस थोड़ा एक आपको पहले आगाह कर देते हैं कि हर एकादशी निर्जल, हर एकादशी निर्जल और 64 राउंड्स। और ऐसे रेगुलर दिनों में भी 32 तो ऐसे ही होता है उनका। और वैष्णव कैलेंडर में जितने अपीयरेंस डिसअपीयरेंस हैं, चाहे वो एज जिसको बोलेंगे हम जानते नहीं, सारंग ठाकुर या उद्धरण दत्त ठाकुर, चाहे ऐसे कोई भी हो, वैष्णव कैलेंडर में जितने अपीयरेंस डिसअपीयरेंस है, हर अपीयरेंस डिसअपीयरेंस निर्जल 64। हमको तो पता नहीं वैष्णव कैलेंडर भी हो। अच्छा ऐसा बुक है, और हम अगर वैष्णव कैलेंडर को लेकर हर अपीयरेंस डिसअपीयरेंस में अगर 64 और निर्जल करने लग जाएं तो नेक्स्ट वैष्णव कैलेंडर में हमारा भी लिस्ट में नाम आ जाएगा। सो भक्त सो एंड सो डिसअपीयर्ड, लेट सेलिब्रेट डिसअपीयरेंस डे। He is coming, अप्रैल में आ रहे हो तो हाँ, अभी तक हम इनपे इनका डिस्कशन पर पहुंचे नहीं है। तो भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज को देखने के लिए भक्ति वैभव स्वामी महाराज आए, तो उनका लेक्चर रखा था। तो भक्ति वैभव स्वामी महाराज एक जर्मन है, इज फ्रॉम जर्मनी। तो इनको एक डिवोटी ने क्वेश्चन पूछा इनके लेक्चर के बाद, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरेंडर, ये क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरेंडर। तो इन्होंने अपने श्रील प्रभुपाद के साथ एक इंसिडेंट को नरेट किया इसके आंसर में। तो उन्होंने कहा कि जब मैं ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन किया, नया नया आप मैंने जर्मनी में ज्वाइन किया, और वहां पर उस समय प्रभुपाद की पुस्तकें सब इंग्लिश में ही थी, कोई ट्रांसलेटेड जर्मन लैंग्वेज में कोई बुक्स नहीं थी, सारी प्रभुपाद की पुस्तकें इंग्लिश में ही थी। तो अब इनकी जब दीक्षा हुई प्रभुपाद से, तो इन्होंने प्रभुपाद को लेटर लिखा, मतलब ये तो केवल जर्मन लैंग्वेज जानते थे और कुछ नहीं जानते थे, इनको जर्मन लैंग्वेज के अलावा कुछ नहीं आता था। तो किसी डिवोटी जिसको इंग्लिश आती थी तो उनसे इन्होंने लिखवाया प्रभुपाद के लिए लेटर। तो लेटर में इन्होंने प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद नाउ आई बीन इनिशिएटेड बाय यू, व्हाट इज दैट वन इंस्ट्रक्शन यू वॉन्ट टू गिव इट टू मी। तो प्रभुपाद ने तुरंत रिप्लाई किया, रीड ऑल माई बुक्स। अब गुरु महाराज का आदेश, रीड ऑल हिज बुक्स एंड ऑल हिज बुक्स आर इन इंग्लिश, हाउ विल ही रीड। तो उन्होंने रिप्लाई में ये नहीं, प्रभुपाद आई विल रीड व्हेन समवन ट्रांसलेट्स इन जर्मन। उन्होंने कुछ समय बाद वापस लेटर में ये यही प्रश्न पूछा, प्रभुपाद आई एम फ्रॉम जर्मनी, आई हैव जस्ट जॉइंड। तो प्रभुपाद को शायद थोड़ा कोई अंदाजा आ जाएगा, व्हाट इज योर इंस्ट्रक्शन। फिर से प्रभुपाद, अब इसमें बहुत अंतराल था ये दोनों लेटर्स में, समय का गैप था। प्रभुपाद ने फिर से वही एक लाइन में रिप्लाई, रीड ऑल माई बुक्स, और ऑल को अंडरलाइन किया प्रभुपाद, रीड ऑल अंडरलाइन माई बुक्स। तो अब ये समझ गए कि प्रभुपाद की ये आंतरिक इच्छा है कि मैं प्रभुपाद की सारी पुस्तकों को पढ़ूं। आप विश्वास नहीं करेंगे उन्हें प्रभुपाद की पुस्तकें उस समय कैसे पढ़ी। उन्होंने इंग्लिश टू जर्मन की डिक्शनरी ली और प्रभुपाद की पुस्तक को रखा, डिक्शनरी को रखा, और ये कह रहे थे कि इनको इतनी भी इंग्लिश नहीं आती थी कि द का मतलब क्या होता है, दैट का मतलब क्या होता है, व्हेन, व्हाट, दिस, इतनी भी इंग्लिश नहीं आती थी। सोचो ऐसे डिक्शनरी लेकर एक एक वर्ड को डिक्शनरी में देख देख कर उन्होंने प्रभुपाद की सारी पुस्तकें पढ़ी, बहुत साल लगे उनको। गुरु मुख पद्म वाक्य, हम लोग जब सुन रहे थे तो हमारे रोंगटे खड़े हो रहे थे कि हमको सब इतने ट्रांसलेटेड प्रभुपाद के बुक्स हैं, चाहे आपको मराठी में पढ़नी है, गुजराती में पढ़नी है, उर्दू में भी है, सिंधी में भी है, इंग्लिश में, हिंदी में, सब लैंग्वेजेस में एज इट इज पड़ी रहती है हमारे पास। तो भक्ति वैभव महाराज ने प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ना उस प्रकार से उसकी शुरुआत की। और उनका आंसर खत्म नहीं हुआ था अभी तक। उन्होंने कहा, सो अब इंग्लिश में लेक्चर दे रहे हो, बाय द वे अमेरिका में इंग्लिश में लेक्चर दे रहे हो, और उन्होंने कहा, बाय द वे जस्ट 2 days अगो आई गेव अ 1 hour लेक्चर इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी टू स्टूडेंट्स ऑफ हार्वर्ड इन इंग्लिश। दिस इज कॉल्ड सरेंडर, सरेंडर टू स्पिरिचुअल मास्टर, एंड दिस इज कॉल्ड रूथलेस डिटर्मिनेशन। प्रभुपाद ने तो खाली इतना कहा था, टू रीड माई बुक्स 4 hours एवरी डे इज द ग्रेटेस्ट तपस्या ऑफ कलयुग। प्रभुपाद ने तो ये भी इमेजिन नहीं किया था कि कोई उनके शिष्य ऐसे भी होंगे कि डिक्शनरी लेके एक एक वर्ड का मीनिंग देख देख कर प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ेंगे। और ये सारे उदाहरण इस धरती पर जीवित हैं। कई बार हमको लगता है ये भागवतम के जो उदाहरण हैं वो पिछले युगों के थे, जो जय श्री राधा मदन गोपाल जी की, पिछले युगों के थे ये लोग, उनके पास उतनी शक्ति थी, समय था, युग अलग था, प्रभाव अलग था। सत्युग, अभी कलयुग है, कलह प्रधान। अरे ये हिटलर के राज्य के, हम लोग कहाँ पैदा हुए हैं? रामचंद्र जी की पुण्य भूमि में। तो जो बचपन से हिटलर के देश में पैदा हुए एक जर्मन, उनके अंदर ये जो डिटर्मिनेशन, उसके वजह से जो कृपा उनको। और इसलिए एक प्रभुपाद के शिष्य कह रहे थे कि प्रभुपाद पहले पाश्चात्य देश क्यों गए, क्योंकि प्रभुपाद को एक अंदाजा था, माय डिटरमाइंड सरेंडर्ड डिसाइपल्स विल बिगिन फ्रॉम देयर। इसलिए अभी आपको हम एक उदाहरण से इस बात को और पक्का समझाना चाहेंगे। जैसे यहां पर आप देख रहे हो और पढ़ रहे हो, कृष्णा भक्ति इज नॉट फॉर शैलो स्विमर्स। एक होता है समुद्र में शैलो वाटर्स होते हैं, तो ये उदाहरण दिया गया है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति रत्नों के समान है, रत्नों के समान। और रत्न वो कहां पाए जाते हैं? मोती, मोती कहां पाए जाते हैं? समुद्र में। समुद्र में कहां? डीप सी। इट्स फॉर द डीप डाइवर्स। इसलिए यदि हम केवल कृष्ण भक्ति के समुद्र के तट पर थोड़ा गीला होके आते रहेंगे बाहर, और ये समझ रहे होंगे कि नहा लिया, और कलयुग में तो ऐसी स्थिति कही जाते हैं चम्मच लेकर, उसमें समुद्र है उसमें से चम्मच में पानी लेकर छिड़का देते हैं, आचमन कहते हैं ना हम लोग, हो गया ना लिए। सो अनलेस वी डाइव डीप इन टू दिस भक्ति रसामृत सिंधु, वी वोंट गेट द पर्ल्स ऑफ कृष्ण प्रेम। तो इसलिए परिवर्तन का अर्थ है डाइविंग डीप इन टू। तो ये एग्जाम्पल हम इसलिए लिए, राधानाथ महाराज ने एग्जाम्पल दिया है, बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, हॉक या उसको हम कहें चील, चील जिसको कहते हैं क्या, गार, घार, घार। तो बहुत सुंदर एक 5 मिनट का लेक्चर है महाराज का, तो डायरेक्टली हम उनके श्रीमुख से सुनेंगे व्हाट इट टेक्स टू सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम द हॉक ऑफ माया, माया देवी के इस चील से बचने के लिए क्या करना है। तैयार हैं आप लोग?
I remember once I was sitting here on the bank of the river Ganga, and up above me I looked into a cloudless sky, and soaring was a hawk. Its feathers of brown, gold, red seemed to be illuminated by the sun. It was circling lower and lower and lower till it was just a few meters above my head. And I looked up at this hawk and saw its yellow eyes intensely gazing into the river, looking for something. Suddenly, the hawk dove headfirst right into the river Ganga. Then there was a skirmish. They were splashing, and the hawk was underwater mainly. And a few seconds later, came out with a flapping fish in his claws. The fish was struggling and squirming for its life as the hawk flew into the forest out of sight. But that fish was just swimming along like any other day with its friends, its family, looking for food, having fun, swishing around. Didn't expect anything traumatic to happen. But suddenly, that fish was ripped right out of its reality. Away from everything it identified with. It was about to die. And isn't that situation potentially for everyone? We just go upon our lives like any other day, and the hawk of fate strikes. There's a death in the family. There's a traumatic experience, disease, or death itself. Perhaps I was thinking at that time, the lesson is we should not be complacent. We should take the opportunities we have in our spiritual life very, very seriously. of the greatest enemies for a yogi is procrastination. We just get into the groove of our lives and we put the most important things off for another day. But we do not know that this yellow-eyed hawk of fate may come for us at any moment. But then there was another lesson. That if that fish was swimming deeper, the hawk couldn't touch it. In the same way, if we go deeper into our spiritual practices, deeper into our meditation, our satsang, our kirtan, absorb our minds to that deeper place within our heart, where there is real fulfillment, then whatever situation may come upon us in this world, it cannot really affect us.
Param Pooja Radhanath Swami Maharaj ki. So the three lessons from this example of hawk and fish. First, hawk of Maya always has his eyes on the fish like sadhak. Ye jo cheel hai, iski drishti ke vishay mein bataya gaya hai. Niti Shastra mein ek shlok hai, jisme bataya gaya hai. कि ये चील 8 मील ऊपर यदि उड़ रहा है तो वहां से भी नहीं 8 योजन ऊपर एक योजन 8 मील है तो 8 योजन यदि ऊपर उड़ रहा है तो वहां से नीचे कोई अगर प्राणी है जिसको उसको पकड़ना है खाना है तो ऊपर से स्पॉट कर सकता है वो. दैट इज हाउ पावरफुल इज दी आई साइट ऑफ एन ईगल. ईगल्स आए बोलते हैं ना. तो महाराज का ये जो उदाहरण है कि हम लोग यहां पर नीचे हमारी साधना कर रहे हैं और ये ध्यान में रखना कि चील की जो नजर है वो ऐसे प्राणियों के ऊपर होती है जो कि इनअटेंटिव होते हैं. तो महाराज ने दूसरा लेसन क्या दिया, फिशेस हु आर कंप्लेसेंट एंड इनअटेंटिव बिकम प्रे. तो उसी सरोवर में या उस नदी में जो मछलियां चौकन्ना नहीं है कि कभी भी ये चील आकर हमें अपने पंजों में दबोच कर ले जा सकती है तो शिकार बनते. सिमिलरली अ साधक हु इज प्रोक्रेस्टिनेटिंग. प्रोक्रेस्टिनेशन का अर्थ है हर समय आगे ढकेलते रहना. मैं कल करूंगा. क्या करूंगा? शरणागत कल होऊंगा भगवान. और बेटा वो हिंदी में क्या कहावत है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब. तो हम उल्टा बोलते हैं, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों. इतनी भी क्या जल्दी है जब पड़े हैं बरसों. और फाइनल बहुत इंपॉर्टेंट लेसन जो महाराज दिए इसमें कि यदि उन मछलियों को उसके अटैक से बचना है तो सरोवर को छोड़ नहीं सकते. सरोवर को छोड़ नहीं सकते और उसको रोक नहीं सकते. उस चील को रोक नहीं सकते, सरोवर को छोड़ नहीं सकते, तो बचे कैसे गहराई में. डाइविंग डीप इनटू आवर कृष्ण कॉन्शियसनेस. किसी भी रिश्ते में भी आप देखिए कि रिश्तों को बदलने से आपको प्रेम प्राप्त नहीं होगा. पाश्चात्य देश, वहां पर उनका क्या मानना है, जितने रिश्तों को बदलते रहो कहीं ना कहीं कभी आपको प्रेम मिलेगा. अभी मुझे हाल ही में एक पेपर क्लिपिंग एक भक्त ने दिया, अभी भी मेरे कमरे में पड़ा हुआ है. ये कलयुग का हाल है. लंदन में एक महिला ने प्रेम को ढूंढते हुए परेशान होते हुए 40 वर्ष की उम्र में अपने कुत्ते से शादी की. बाकायदा पब्लिक में सबके सामने, जो भी वो उनके वहां के सेरेमनीज होती हैं, वो सेरेमनी में कुत्ते से. जस्ट अंडरस्टैंड द नीड टू लव एंड टू बी लव्ड. और उस आर्टिकल में वो उसके उसके क्या व्यूज हैं, क्या उसके इंटेंशंस हैं, उसने कहा एटलीस्ट आई विल नॉट बी चीटेड बाय दिस डॉग. एटलीस्ट आई कैन हैव अनफ्लिंचिंग ट्रस्ट इन दिस डॉग. फॉरगेट अबाउट लव. तो हम रिलेशनशिप की बात कर रहे थे. किसी भी रिश्ते में आपको यदि सही प्रेम ढूंढना है तो उस रिश्ते में और गहरे जाओ. सिंपली चेंजिंग विल नॉट फेच यू दैट लव. गोइंग डीपर इन दैट सेम रिलेशनशिप विल डेफिनेटली फेच यू दैट लव. सेम इज द सोल विथ कृष्णा. सो डाइविंग डीप, बिकमिंग डीप डाइवर्स इन भक्ति रसामृत सिंधु, नॉट शैलो स्विमर्स. वहां पर क्या मिलेंगे, खाली वो जो होते ना छोटे छोटे शंख, वो मिलेंगे आपको उधर, छोटे छोटे शंख मिलेंगे. परंतु यदि मोती और रत्न चाहिए तो हिम्मत चाहिए अंदर तक जाने की. हम हाल ही में हमारे कुछ एक भागवत मंथन के ग्रुप के साथ ये चर्चा कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण को यदि शरणागत होना है, कृष्ण भक्ति प्राप्त करनी चाहिए तो जिगर चाहिए, जिगर. कुछ वीडियोस आते हैं ना, नॉट फॉर द फेंट हार्टेड. तो वैसे ही कृष्ण भक्ति के विषय में पहले से ही वार्निंग हमारे शास्त्रों में दिया गया है, कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है. यदि दिल कमजोर है, जाओ, बहुत से 33 करोड़ देवता हैं. हिम्मत है तो कृष्ण भक्ति करो. हिम्मत है तो कृष्ण भक्ति करो. और हिम्मत चाहिए कृष्ण भक्ति करने के लिए, हिम्मत चाहिए. क्योंकि भगवान जो है वो टेस्ट करते हैं मैक्सिमम हमारे लिमिट तक. और जो जो हमारे अंदर ऐसे ऐसे अनर्थ जिनके विषय में हमारे हृदय के कौन से ऐसे कक्षों में ऐसे ऐसे अनर्थ छिपे हुए काली कोठड़ी में हमने रखे थे, उनको बाहर निकाल निकाल कर दिखाते हैं. तेरे हृदय से निकाला है, देखिए ये तेरा ही फोटो है. तब फिर डर लगता है, तब लगता है कि भाई कृष्ण भक्ति तो भयावह है. भयावह कृष्ण भक्ति नहीं है, भयावह हमारी स्थिति है जो भगवान पहचान करा कर देते हैं. इसलिए मोती चाहिए तो अंदर तक कूदना है. अब इसी के कनेक्शन में आपको हम एक और वीडियो दिखाएंगे. हॉक, कंपेयर टू माया। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग रियल फुटेज है, एक हॉक और एक गिलहरी। तो मैं आपको बता दूं, इसके बाद हम इसके कुछ लेसन्स सीखने की कोशिश करेंगे। तो ये चील एक गिलहरी के पीछे पकड़ने के, स्क्विरल। तो यहां पर चील की तो तुलना है आप तो जानते हैं किससे, गिलहरी हम लोग। तो चील से बचते हुए वो गिलहरी पहले शरण लेती है सूखे पत्तियों में, वहां शरण लेती है। और उसके पश्चात अंतिम शरण वो कहां लेती है वो आप देखिए। और देखते समय हमको अपने आप को गिलहरी के जगह पर रखना है, वो भूलना मत। शो स्टार्ट करें, हमारा शो है। ध्यान से देखा होगा, दो शेल्टर्स, सबसे पहले वो गिलहरी गई सूखी पत्तियों में शरण ग्रहण करने, और उसके पश्चात वो जो पेड़ का सॉलिड ट्रंक, उसमें जो बिल था, उस बिल के अंदर। तो अब लेसन क्या है? ड्राई लीव्स दे आर कंपेयर्ड टू सुपरफिशियल मैकेनिकल साधना। तो जो चील है वो तो पीछे लगी हुई है, चाहे हम मंदिर में बैठे रहें, चाहे घर में हमारे ऑल्टर के सामने बैठे रहें, चील की नजर हर समय हमारे ऊपर है। और यदि हम केवल सुपरफिशियल, हमारे जप को पूरा करने के लिए करना है या साधना कार्ड में भरने के लिए करना है, इफ आवर डिवोशनल सर्विस इज मैकेनिकल एंड सुपरफिशियल, इट्स लाइक टेकिंग शेल्टर ऑफ ड्राई लीव्स। हाँ, उस समय उस गिलहरी को क्या लगा उस सूखी पत्तियों के अंदर कि मैं सुरक्षित हूं, और चील पहचान गई कि क्या है उसकी स्थिति, और सॉलिड ट्री टंग इज कंपेयर टू साधना विथ सब्सटेंस एंड विथ फीलिंग्स। देन वी सॉ दैट द स्क्विरल वॉज सेव्ड। सो एज लॉन्ग एज वी रिमेन इन द शेल्टर ऑफ सॉलिड ट्री ट्रंक लाइक एसोसिएशन विच इज सब्सटेंशियल विच इज फुल ऑफ फीलिंग्स, भगवान श्री कृष्ण हम 64 माला कर लें या हरिदास ठाकुर जैसे 192 राउंड्स कर लें, परंतु यदि उसके अंदर सब्सटेंस और फीलिंग्स नहीं है, तो जैसे सत्स्वरूप महाराज कहते हैं, वी आर सिंपली शूटिंग एम्प्टी ब्लैंक बुलेट्स, एंड एम्प्टी ब्लैंक बुलेट्स मेक मोर नॉइज बट डजंट डू एनीथिंग टू द टारगेट। And when the bullets are loaded, then comes the real shooting. Then it takes place. तो यहां पर देवराज इंद्र का उदाहरण कि उन्होंने ये जो श्लोक, आज का श्लोक हमने लिया, वो जो श्लोक उन्होंने कहा, it was blank bullets. क्योंकि वही उसी प्रकार की गलती आगे चलकर इसी स्कंद में उन्होंने फिर की, और उसके बाद भी कितने बार, बारंबार। तो इसलिए ये लेसन हमें सीखना है, हमारा डिस्कशन चल रहा है परिवर्तन के ऊपर, कि परिवर्तन केवल बोलने की वस्तु नहीं है, केवल सुनकर भूल जाने की वस्तु नहीं है। जैसे कि भक्ति वैभव स्वामी महाराज, भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, इन्होंने जो अपने उदाहरण से अपने जीवन में ऐसे ऐसे परिवर्तन लाकर इतने लोगों को प्रोत्साहन ये कर रहे हैं, तो वो है असली समर्पण, और वो है हमारा वास्तविक सब्सटेंशियल ऑफरिंग भगवान के चरण कमलों पर। इसलिए जो हमने कहा कि कृष्ण भक्ति कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, क्योंकि भगवान पूर्ण शरणागति मांगते हैं, भगवान केवल हमारे बैंक से कुछ डोनेशन नहीं मांग रहे, भगवान केवल हमारे 24 घंटों में से 2 घंटे नहीं मांग रहे, भगवान कह रहे हैं मुझे 24 घंटे चाहिए, और भगवान कहते हैं मुझे तुम्हारे 24 घंटे से ज्यादा तुम चाहिए, तुम। बाकी जो आराधनाएं होती हैं देवी देवताओं की, वो कहते हैं ठीक है ये मुझे अर्पित कर दो, भगवान कहते हैं वो सबको साइड में रखो, तुम आओ। तो फिर डर जाते हैं, मैं क्यों, मुझे तुम चाहिए। तो ये है आज का हमारा लेसन इस श्लोक से. कृष्ण भक्ति इज नॉट फॉर द शैलो स्विमर्स, इट्स फॉर द डीप डाइवर्स. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. किसी का कोई प्रश्न?
हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू फॉर अ वेरी पावरफुल क्लास टुडे. काफी इंस्पायरेशन मिला. मेरा क्वेश्चन ऐसा है प्रभु कि परिवर्तन हम आपने बात किया लाइक यू नो कृष्ण भक्ति इज नॉट फॉर द शैलो स्विमर्स, डीप करना चाहिए, नहीं तो एम्प्टी बुलेट्स जैसा हमारा ये होता है, मैकेनिकल तरीके से होता है. तो मैं अगर मेरा खुद का जीवन देखता हूं तो मैंने एक्सटीरियरली काफी परिवर्तन कर लिए है, तिलक लगाना, कंठी माला पहनना या धोती कुर्ता पहनना, 16 राउंड्स भी करता हूँ रोज, बट स्टिल यू नो आई डोंट गेट काइंड ऑफ फीलिंग्स या उस प्रकार से एकदम डीप कृष्ण भक्ति में अभी तक समहाउ जा नहीं पाया हूँ. सो परिवर्तन करने का कोशिश कर रहा हूँ बट अभी तक मतलब आई विल नॉट से कि इवन 1% भी कुछ हुआ है. इस स्टेज में अगर सपोज आई डाय, मृत्यु आ जाती है, सो मेरी जो मैंने जो पाथ चुना है कृष्ण भक्त बैक टू होम बैक टू गॉडहेड का थोड़ा बहुत चलने का प्रयास कर रहा हूं, क्या ये पर्टिकुलर जो मेरा परिवर्तन जो एक्सटर्नल किया है विल इट हेल्प मी फॉर अ लॉन्ग टर्म गोल और इट विल नॉट हेल्प, इट इज नथिंग?
देखिए सबसे पहले ये बात ध्यान में रखिए कि परिवर्तन ये केवल हम अपने बलबूते पर नहीं हासिल कर सकते. हम हमारी तरफ से पूरा प्रयास भगवान को अर्पित करते हैं, हम केवल प्रयास अर्पित करते हैं, परिवर्तन लाने की जिम्मेदारी उनकी है. हम प्रयास अर्पित करते हैं तो इसलिए भगवान हमारा प्रयास देखते हैं, सिंसियरिटी, कि हम कितने प्रामाणिकता से प्रयास कर रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने का. और उसमें यदि हमारी खामियां होंगी, जैसे आपने कहा कि हाँ अभी तक हम केवल एक एक्सटर्नल लेवल पर परिवर्तन लाएं, तो हाँ वो एक्सटर्नल लेवल पर जो परिवर्तन है, हमने एक उदाहरण पहले लिया था कि कोई आर्मी का कोई ऑफिसर होता है, उसके जो मेडल्स उसके वर्दी के ऊपर दिखते हैं, वो एक्सटर्नली दिख रहे मेडल्स उसके वर्दी के ऊपर, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कलर्स के मेडल्स होते हैं, उसके स्टार्स होते हैं, तो वो सब उसके वर्दी पर चढ़ते कब हैं? जब उसने उस प्रकार के अकम्प्लिशमेंट्स हासिल किए आर्मी के अंदर, तब जाकर वो वर्दी के ऊपर चढ़ते हैं. वो तो आप किसी टेलर के पास भी जाकर सिलवा सकते हो, स्टार्स बनवा सकते हो किसी फैब्रिकेटर पास जाके, लेकिन उसका कोई पर्पज नहीं, फिर कोई सैल्यूट नहीं मारने वाला है उसको. तो इसलिए अगर ये हमारी वर्दी है, तिलक हम लगा रहे हैं, ये वेशभूषा, ये अगर हमारी वर्दी है, तो इस वर्दी का जो पैरेलल है वो क्या है, जैसे कि किसी भी इकोनॉमी में क्या बोलते हैं कि अगर आपके पास इतने करेंसी नोट हैं आरबीआई के अंदर, तो उसका इक्विवेलेंट गोल्ड होना चाहिए ना, नहीं तो हर कोई देश खाली छापते रहेगा करेंसी नोट और इकोनॉमी ऐसे थोड़ी बढ़ती है. उसका इक्विवेलेंट गोल्ड होना चाहिए. तो वैसे ही यदि बाहर इतना परिवर्तन आया तो इक्विवेलेंट उसके अंदर हृदय के अंदर सोना होना चाहिए, सब्सटेंस होना चाहिए. और हाँ हमने शुरुआत की है इस परिवर्तन की और भगवान हमारी शुरुआत को देख रहे हैं. परफेक्ट एग्जाम्पल सुदामा का है कि सुदामा उन्होंने प्रयास किया भगवान को कुछ अर्पित करने का और वो भीख मांगकर जो पोहा लेकर गए वो हमारा जो आप जो कह रहे हैं ना कि परिवर्तन हम कितना लाए उसका क्वांटिटी कितना है, क्वांटिफाइबल कितना है, तो सुदामा उनके ऑफरिंग को यदि देखे तो क्वांटिफाइबल कितना ऑफरिंग था उनका, इतना सा, और वो भी फटे पुराने चिथड़ों में बांध कर जो भिक्षुक को दिया जाता है वो पोहा मिला उनको, वो लेकर गए। लेकिन भगवान ने क्या देखा कि ये सिंसियरली प्यूरिटी से मुझे को अर्पित करने आया, और वो भी उस समय जब भगवान वृंदावन में नहीं थे, द्वारकाधीश बने हुए, जहां रुक्मिणी और ऐसे 16,108 लक्ष्मियां उनको 56-56 भोग हर एक ऑफरिंग में खिला सकती थी। द्वारकाधीश बने हुए भगवान सुदामा की सिंसियरिटी को उनका आस्वादन किया, पोहा तो निमित्त मात्र था, भगवान ने आस्वादन किया उनके सिंसियरिटी को, और फिर उनको इनाम में क्या मिला। तो ये क्लासिक एग्जाम्पल है कि भगवान क्या देखते हैं और फिर क्या देते हैं। तो सुदामा अगर खुद प्रयास करते तो क्या वो इतना आलीशान बंगला भगवान की सेवा, और भगवान की सेवा की उन्होंने वो आलीशान बंगला मिलने के बाद भी, तो यदि वो खुद प्रयास करते कि मैं मेहनत कर ओवर टाइम कर और एक्स्ट्रा जॉब लेकर, इधर इन्वेस्टमेंट कर वहां म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट कर मैं बंगला खड़ा करूं भगवान की सेवा के लिए, नहीं, उन्होंने कहा कि जो मेरी कैपेसिटी है, मेरी कैपेसिटी क्या है, पोहा ऑफर करने की कैपेसिटी, वो मैं कर दूं। लेकिन उन्होंने वो उनके जो सिंसियरिटी थी वो कंप्लीट थी, क्वालिटी वॉज कंप्लीट, क्वांटिटी डजंट हैव टू बी कंप्लीट, क्वालिटी हैज टू बी कंप्लीट। रीबोल, योर बेटर हाफ ऑल्सो वॉन्ट्स टू आस्क।
प्रभुजी, जब हम लोग साधक ये वर्ड यूज करते हैं तभी ये पार्ट आता है कि उसमें उतार चढ़ाव होंगे ही, तो क्योंकि भक्त सिंसेरिटी से कर रहा है तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो कृष्ण भक्ति में डीप भी जाता है मगर वो फिर से शैलो भी हो जाता है, क्योंकि एक्सटर्नल्स का बहुत बड़ा प्रभाव उसके जीवन पर होता है। तो इस केस में क्या होता है कि मैं भी देख रहा था कि जैसे वो हॉक उसको पकड़ कर डायरेक्ट उसको मार डालता है ना, तो ऐसे भक्त के जीवन में उसके भक्ति का खून नहीं होता है। नॉर्मली वो अगर शैलो है तो कुछ समय के लिए उसकी चेतना पर उस माया का प्रभाव होता है और वो उस स्टैंडर्ड वो फॉलो नहीं करता है जितना वो डीप में करता है, और ये अप एंड डाउन ही उसके जीवन में बहुत समय तक चलता है, और इसीलिए हम लोग इसके इस संघर्षमय जीवन को साधना भक्ति बोलते हैं। तो प्रॉब्लम बस यही है कि जब भी कभी वो शैलो है तब वो बहुत गिल्टी फीलिंग अपने मन में लेकर जाता है, और उस गिल्टी फीलिंग से वो माया से कम और उस गिल्टी फीलिंग से ज़्यादा मरता है। तो ऐसे समय पर क्या किया जाए, यानी हमारा संघर्ष बाहर चीजों से ज्यादा हमारा संघर्ष हमारे खुद से ही बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और फिर देखते हैं कि कभी अगर हम लोग जैसे आज के जैसा इंस्पिरेशनल क्लास लिया कुछ और अच्छा कुछ ठान लिया और उसके बाद धीरे धीरे करते करते फिर से अगर डीप चले जाएं तो फिर से हम लोग नॉर्मल भी होते हैं, मगर उस समय पर वो जो संघर्ष है वो एक्सटर्नल से ज्यादा इंटरनल ज्यादा होता है।
देखिए जब यदि हम हमारे हेल्थ को हेल्थ कॉन्शियस, यदि कोई जिसको कहते हैं ना हाइपोकॉन्ड्रियाक्स जो होते हैं, हेल्थ कॉन्शियस जो होते हैं, तो उनके विषय में बताया गया है कि वो लोग जब बीमारी उनको अटैक करती है तब वो शुरू नहीं करते न्यूट्रिशियस डाइट और वर्किंग आउट और ये सब, जो प्रोएक्टिव हैं बीमारी आने से पहले, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर जिसको कहते हैं, बीमारी आने से पहले हर समय मैं, मुझे ये हमारे एयरफोर्स का स्लोगन याद आता है, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर. सो देयरफॉर अ सोल्जर हैज टू कीप स्वेटिंग ड्यूरिंग पीस टाइम, ही इज ऑलवेज kept on the toes, always kept on the toes, as if war is just tomorrow. So the more you sweat in peace, less you will bleed in war. तो जब हमारी भक्ति हमारे अनुसार और शास्त्रों के अनुसार सही रफ्तार पर सही दिशा में चल रही है, उस समय हमें इतना वो एनर्जी कंजर्व करके रखना है कि जब प्रॉब्लम आएंगे आएंगे तो हम उसको यूज कर सके. नहीं तो यदि हम फुर्सत में इत्मीनान में कि अरे अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो चील दिखाई नहीं दे रही कहीं, या कई बार हम देखते हैं वो चील दूसरे मेरे गॉड ब्रदर के साथ बिजी है, तो हमको लगता है उधर बिजी है अभी, तो मैं थोड़ा टीवी ऑन कर लेता हूं. तो हमें वो जो कृष्णा कॉन्शियस एंथुजियाज्म, एनर्जी, डिटर्मिनेशन, उसको हर दिन कंजर्व करके रखते रहना है, रखते रहना है, रखते रहना है. क्योंकि जब इमरजेंसी सिचुएशंस, वॉर जब आता है, तब उसको पता लगता है कि खून बहाना और पसीना बहाना दोनों में अंतर है ना, तब उसको समझ में आता है कि कॉस्ट किसका ज्यादा है. फिर वो सोचता है यस इट वॉज अ वाइज डिसीजन टू स्वेट आउट देन टू ब्लीड. और ये जो आप कह रहे हैं कि हाँ, ये अक्सर होता है गिल्टी कॉन्शियस, कि कोई भक्त है थोड़ा सा भक्तों के संग से दूर हटता है, फिर हटता रहता है और दूर और दूर और दूर, और इतना दूर चला जाता है कि फिर वापस आने के लिए उसके पास वो हिम्मत नहीं होती. जैसे कि सरस्वती ठाकुर ने वो ब्रह्मचारी, जो चेन्नई में गौड़िया मठ का ओपनिंग था, वो ब्रह्मचारी किसी कारण की वजह से गौड़िया मठ छोड़कर चले गए, तो सरस्वती ठाकुर ने इनॉग्रेशन रुकवा दिया, टेंपल इनॉग्रेशन सेरेमनी रुकवा दिया, सब जाकर उसको ढूंढ कर लेकर आओ, उस ब्रह्मचारी को ढूंढ कर लेकर आओ. तो सब लोग गए, इतने सब अरेंजमेंट्स उन्होंने किया था, गौड़िया मठ वहां पर उसका ओपनिंग इनॉग्रेशन डीटी इंस्टॉलेशन ये सब कुछ होने वाला है. Everything was at standstill. Everyone was told to go and get that one devotee back. क्यों? क्योंकि महाराज इस इंसिडेंट को सुना रहे थे और महाराज ने कहा, why सरस्वती ठाकुर, he arranged for all the devotees to go look for him and get him back, because that devotee had that sincere desire to come back. तो कोई अगर किसी परिस्थितिवश दूर भी चला गया, परंतु यदि उसके अंदर इच्छा है मुझे आना है वापस, तो भगवान अरेंजमेंट करते हैं, भगवान अरेंजमेंट करते. एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू योर सिंसियर डिजायर, वेदर यू आर हेल्दी वेदर यू आर डिजीज्ड, इफ यू आर सिंसियर डिजायर इवेंचुअली यू विल गेट कृष्णा स्मर्सी.
धन्यवाद प्रभुजी. सॉरी, तो प्रभुजी आपने एक चौथा पॉइंट कहा, रुथलेस डिटर्मिनेशन. तो कई बार
आपसे सीख रहे हैं वही
सॉरी गुरु जी, तो कई बार जब हम कुछ चीज़ें पालन करने लगते हैं तो हमारा एक एक्सपेक्टेशंस होता है बाकी भक्तों से भी कि एटलीस्ट ये लोग, क्योंकि जैसे जैसे हम कृष्ण भावना में बढ़ते तो समझ में आता है बाहर का प्रभाव, तो हम जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं भक्तों को या जो भी, तो इन्होंने भी इस प्रकार से करना चाहिए एटलीस्ट, तो ये हमारी भावना होती है, फॉल्ट फाइंडिंग मेंटेलिटी बढ़ता है हमारा जब हम लोग रुथलेस होते जाते हैं तो बाकी भक्तों में कि ये नहीं कर रहा है, इसने करना चाहिए, इसने करना चाहिए, और साथ ही साथ उसके साथ अधिकार भी होता है। कई बार अधिकार नहीं होता तो वो अच्छा होता है कि ठीक है भाई तू तुम्हारा मेरा मैं कर रहा हूँ, लेकिन जब अधिकार होता है तो उसको मिशन और उसको वैयक्तिक, जब ऐसे काउंसलर होता है तो काउंसिलिंग की वैयक्तिक प्रगति के लिए भी हमको देखना पड़ता है, तो ये मैनेज करना बहुत कठिन हो जाता है क्योंकि फिर उसे वैष्णव अपराध या तो इसको कैसे बैलेंस किया जाए या कैसे, या तो फिर वो काउंसलर पर छोड़कर अपना हम चालू करें ताकि फॉल्ट फाइंडिंग मेंटेलिटी बढ़े नहीं, अपराध ना होवे, या फिर उसको कैसे उसको बताना है कि ये जरूरी है मिशन के लिए और प्रगति के लिए, उसके प्रगति के लिए इसको बैलेंस कैसे किया जाए।
इसलिए मैंने कहा था हमें रुथलेस होना है स्वयं के ऊपर, और दूसरों को हमें इंस्पायर करना है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बहुत स्ट्रॉन्ग सिद्धांत सुनाए लेकिन फाइनली वो अर्जुन को इंस्पायर करने के लिए, और लास्ट में उन्होंने अर्जुन को ये भी कह दिया यथेच्छसि, मैंने मेरी तरफ से पूरा जोर लगा दिया है, अब अर्जुन तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें निर्णय लेना है। क्योंकि फाइनली भगवान श्री कृष्ण से प्रेम जो है वो स्वेच्छा से ही हो पाएगा, और हां उसी बहुत ही स्ट्रांग सिद्धांत को हम कैसे प्रेजेंट करें, जैसे प्रभुपाद ने सिंपल उदाहरण दिया कि सास जो है वो डायरेक्टली अपने बहू, यदि कल्चर्ड है सास तो प्रभुपाद के उदाहरण किसके लिए था, इफ मदर इन लॉ इज कल्चर्ड शी विल टीच द डॉटर इन लॉ थ्रू द डॉटर। एक मैं इसके विषय में एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा, छोटी सी है घबराइए मत। तो एक राजा था और उस राजा की एक आंख खराब थी, और राजा की एक आंख खराब तो बहुत नोटिसेबल चीज है ना, तो राजा ने एक पेंटिंग कॉन्टेस्ट रखा अपने राज्य में और पेंटर्स को कहा कि मेरा पोर्ट्रेट निकालो। अब पेंटर्स डरे हुए कि भाई राजा का एज इट इज पोर्ट्रेट निकालेंगे तो एक आंख तो इसकी काम नहीं कर रही, तो राजा देखेगा तो गुस्सा होके बोल देगा इसको तो सूली पे चढ़ाओ। तो पहले पेंटर ने सोचा कि मैं दोनों आंख ठीक बनाता हूं, खुश हो जाएगा राजा, फर्स्ट प्राइज मुझे दे देगा। तो उसने कैसी पेंटिंग बनाई, राजा की अच्छी है, दोनों आंखें अच्छी है, एकदम दुरुस्त है, वैसी पेंटिंग बनाई। दूसरे ने सोचा नहीं नहीं नहीं, मैं अगर ऑनेस्टली बनाऊंगा तो राजा खुश होगा कि हाँ ये ऑनेस्ट पेंटर है। तो ऑनेस्टली उसने एक आंख उसकी खराब है, एक आंख चल रही है, वैसे बनाई। तीसरे पेंटर ने, वो सबसे इंटेलिजेंट था और उसको फर्स्ट प्राइज मिला, उसने राजा की पेंटिंग बनाई, राजा धनुष और तीर लेकर निशाना लगा रहा है। तो अपने आप एक आंख बंद करनी है, तो उसको मिला फर्स्ट प्राइज। अब इसका मॉरल क्या है कि अगर कोई भक्त की एक आंख काम नहीं कर रही है तो उसको बोलने का तरीका है, उसको अगर सीधा बोल दे कि भाई तू तो एक आंख से अंधा है तो वो भी गलत है। और कई बार हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर गलतियां हैं, हम लोग बोलते हैं प्रभु आप तो वैकुंठवासी हैं, आप तो प्योर डिवोटी हैं, आपकी चरण धूली मेरे माथे पर, आपका महाप्रसाद, प्रभु आप तो शुद्ध भक्त हैं, आप तो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद, ये सब बड़ा चढ़ाकर कई बार है ना, इस्कॉन की लैंग्वेज, तो वो पेंटर है कि उसके अंदर गलती है लेकिन दिखाओ मत, चढ़ाओ उसको और ऊपर चढ़ाओ। मैच्योर्ड पेंटर कौन है कि उसने गलती को छुपाया नहीं और हार्शली प्रेजेंट भी नहीं किया। दिस इज हाउ अ काउंसलर एंड प्रीचर शुड बी, बैलेंस, बैलेंस ऑफ बोथ, रुथलेस फॉर वन सेल्फ, मर्सीफुल फॉर अदर्स। हरे कृष्णा। तो हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि हमारे अमित देसाई प्रभु, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, बहुत हाईटेक कैमरा के साथ बैठे हैं आज। और ये कैमरा वो हाल ही में 2 दिन पहले बॉम्बे जाकर, वो और उनके बेटे अक्षत, हमारे सहस्त्र शिष्य प्रभु बॉम्बे जाकर, वहाँ पर जो अभी ये जो वीडियो कैमरा के टेक्नोलॉजी का सबसे हाई एंड टॉप मॉडल, वो कैमरा खुद के पैसों से खरीद के मंदिर के लिए राधा मदन गोपाल जी को गिफ्ट के रूप में लाए हैं, जिसका पूरा कॉस्टिंग कुछ तकरीबन 2.5 लाख ये कैमरा का, सब कुछ मिला के उसके एक्सेसरीज वगैरह। तो अमित देसाई प्रभु जो कि इतने सालों से ये सेवा कर रहे हैं, हमारे राधा मदन गोपाल जी के कैमरामैन, तो हम इनको धन्यवाद देना चाहेंगे, इनके पूरे परिवार को, इनको जिन्होंने मेहनत कर कर जाकर स्पॉन्सर कर कर लेकर आकर अभी आज पहला इसका इनॉग्रेशन यहाँ पर किए हैं। तो 3 बार जोर से
हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।
प्रभु जी एक ऐड करना था। एक्चुअली जब ये सेवा चालू हो गई आपके लेक्चर्स को या यहाँ के प्रोग्राम्स को शूट करने का, तो उनको सिर्फ शूट करना आता था, लेकिन बाकी का जो भी प्रोसेस था, उसको सेव करना, अपलोड करना, जो भी था, वो उन्होंने सब सीख लिया उसको, और अभी उसमें वो पूरा एक्सपर्ट और निष्णात बन गए, और अभी 1 मैन आर्मी में, और अक्षत प्रो की हेल्प से वो पूरा सेवा देखते हैं। तो जीरो से स्टार्ट किया।
हाँ, तो हाँ, उन्होंने सब कुछ सीख लिया कि कैसे उसको कॉम्प्रेस करना है और कैसे उसको बाद में ट्रांसफर करना है अलग अलग फाइल्स में, सब कुछ उन्होंने सीख लिया है। तो अभी हमको यही डर है कि वो अपना केक शॉप छोड़कर वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करने वाले हैं शायद। लेकिन जो भी है, रसिकाचार्य प्रभु जो इनके साथ गए थे, उनसे कल मैं फोन पर बात किया, जिन्होंने इसके बारे में बताया, मॉडल्स के बारे में, वो कह रहे थे कि प्रभु अमित देसाई प्रभु इतने सिंसियर हैं कि हर चीज, प्रभु जी एक परफेक्शनिस्ट हैं, तो हर चीज एकदम उनको प्रिसाइसली करनी होती है, तो बहुत इम्प्रेस हो गए प्रभु जी से। तो इसलिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे अमित देसाई प्रभु, आपके सिंसियरिटी और आपके प्रिसिजन के ऊपर। हरि बोल। जय श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, ताई गौर प्रेमानंदी,
श्रीमान शिक्षाष्टकम प्रभु की।